Thank you. semua semua kita sedang berada di tempat yang kehidupan mereka berada di rumah bapa bapa kita di sini dan orang yang tidak yang
आध रात में पहुंचे और उस समय कहते जी मुझे भूख लगी है, भोजन की सामग्री भोज्य सामग्री उपस्थित होने खाद्य सामग्री उपस्थित होने पर कहते जी मुझे भूख नहीं, मुझे रुचि नहीं है। असमय बेसमय जब कभी वो हो जाता और कोई ऐसी चीज मांग लेते जो कि वहां पर उपस्थित न हो, किंतु कृष्ण बड़ी सहनशीलता के साथ में उनकी सेवा कर रहे थे। एक समय दुर्वासा जी बोले मुझे दही और बुरे अभी अभी लाओ, सवेरे भोर में ही भोर में करीब तड़के 6 बजे सूर्योदय के पहले के समय ही उन्होंने दही और बुरा मांगा। कृष्ण ने ये चीजें वहां पर उपस्थित की। दुर्वासा जी से सिखाने के पहले ही नहीं इसे थोड़ा सा ग्रहण कर और अवशिष्ट को कृष्ण के सारे शरीर में मल दिया, ऊपर से नीचे तक चारों तरफ में लग और बोले ये तुम अपना रथ मंगाओ। कृष्ण का रथ वहां पर, कृष्ण ने अपना रथ मंगाया, मैंने घोड़े की जगह में तुम लगो और घोड़े की जगह में कृष्ण को लगा दिया और स्वयं रथ के ऊपर में बैठ गए और हाथ में चाबुक लेकर के और लगाम कृष्ण को नहीं दिया और आदेश देने लगे जैसे इधर चलो इधर चलो। सारी गोपियां सारा रानीवास और सारी जसपुरी उसको देख रही थी, कृष्ण उनके आदेश संसार में थे। कुछ देर के बाद में प्रसन्न होकर के कहा जी अब लौटा ले चलो रथ। फिर राजभवन की तरफ में आया और वहां से उतर कर कृष्ण को गले से लगा लिया। बोले जैसे आपके समान और कोई जगत में कैसे सहनशील हो सकता है, यह असंभव है। मैं एक चाहता था जो तुम्हारे समस्त अंगों में दही और बुरे का लेप कर दो मंत्र पूछ कर, जिसे तुम्हारे अंगों में कहीं भी कोई बाण और कोई भी अस्त्र शस्त्र न लगे। मैंने सब तो चलाकी से कर लिया किंतु पैरों के नीचे हमने तुमको दही और बुरा नहीं लगाया, इसलिए यहीं पर कुछ सावधान रहना। मुझे संदेह है कि यहीं पर यदि कुछ हो अन्यथा तुम्हारा शरीर सारा मैंने वज्र कर दिया और कोई भी बाण कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारे अंगों पर प्रभाव नहीं करता। अंत में हम लीला में देखते हैं कि जिस समय में बहली ने बाण मारा था उस समय में कृष्ण के ऐसा दिखलाया गया कि वो बाणु में होता
है,
दुर्वासा ये चीज पहले से ये चीजों को जान। कृष्ण ने अंतर्ध्यान के लिए ये सब चीजों का व्यवस्था की थी, लीला संगोपन का यह एक उनका तरीका था। अन्यथा यदि विषों से विष खा करके नहीं कृष्ण के ऊपर में प्रभाव पड़ता है, आग को खा लेते हैं, काली हस्त में विष से आग लगी हुई थी उसमें उन्होंने पान किया, उसका पानी उनका कुछ नहीं हुआ, भीष्म के बाण से कुछ नहीं हुआ, तो पहले के बाण से होने का तो कोई प्रश्न नहीं है। भीष्म कर्ण भीष्म द्रोण कर्ण इत्यादि के बाणों से भी कुछ नहीं हुआ, तो इनका क्या विवाद है। या तो एक उनकी अंतर्ध्यान लीला के लिए उन्होंने ऐसा अवलंबन किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण के लीला संगोपन के विषय में दुर्वासा जी का भी संदेश था। सारी ऋषि द्वारका में उपस्थित हुए थे, यहाँ पर आजकल सोमनाथ है उसको क्या कहते हैं, कौन क्या धाम कहते हैं, सारे ऋषि वहाँ पर उपस्थित हुए द्वारका में,
नासिक
नासिक वहाँ सभी सारे ऋषि वहाँ पर नारद देवल अतिथि वशिष्ठ उसमें ये दुर्वासा ऋषि भी थे, वे लोग वहीं पर रहकर समुद्र में स्नान करते हैं, तीर्थ में स्नान कर वहाँ पर अपनी इष्ट गोष्ठी करते थे। एक दिन शाम वो जो बहुत ही सुंदर थे कृष्ण के लड़के शाम बहुत ही सुंदर थे, उनको स्त्री वेश में कुछ लड़कों ने जो वंशियों के लड़कों ने सजा और उनके पेट को ऊंचा कर कपड़ों से और उस पर एक तवा लोहे का तवा बांध कर उसे स्त्री वेश में सुसज्जित कर इन ऋषियों के पास ले आए और बोले, ये महात्मन आप लोग तो अंतर्जामी हैं और सर्वज्ञ हैं, ये लड़की अभी नव विवाहिता है और इसको गर्भ रहा है, हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग ये बतलाएं कि इसके गर्भ से लड़का या लड़की क्या संतान पैदा होगा। चार पांच राज पूछने पर ऋषियों को कुछ होता है, उसमें दुर्वासा ऋषि हो सकता है, दुर्वासा ऋषि नहीं अभी संपर्क किया, बड़े इससे बोले दुर्वासा ऋषि गंभीरता से बोले, इसे लड़का होगा और न लड़की होगा, इसके पेट से एक मुसल पैदा होगा जो सारे जदवंशियों का ध्वंस विध्वंस कर देगा। इसने सुनते ही बच्चे डर गए और सचमुच उसका दूसरी जगह लेकर के खोला पेट तो देखा एक मूसल उसके पेट से गिर पड़ा। ये लोग उग्रसेन के पास में पहुंचे और उग्रसेन से कहा, उग्रसेन महाराज उग्रसेन भी बड़े डर गए, उन्होंने अपने नौकरों को आदेश दिया इसे रगड़ कर उस मूसल को जला दो और उसमें लोहे का जो सांब है उस सांब को रगड़ करके उसे चूर्ण बनाकर और समुद्र में बीच गंभीर में नौका में ले जाकर के फेंक दो। सांब उन्होंने मुसल को जला दिया और उसे लोहे के सांब को निकालकर उसके रगड़ते 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 उसको एकदम धूल सा बना दिया, किंतु कुछ लोहे का अंश जिसको रगड़ रहे थे वो त्रिकोण में होता हुआ कुछ ऐसा रह गया जिसको हाथों से पकड़ा नहीं जा सका, उसको भी उसी चूर्ण के साथ ही छोटा सा टुकड़ा और उसको उस कागज में किसी का पात्र में रख करके और समुद्र के बीच में नौका से जा करके छोड़ दिया। यही समुद्र के लहरियों से फिर से वो धुल लिया
राख
वो धुली स्वर्ण चूर्ण बतावा के किनारे पे आकर बहुत बड़ा भारी एरका मैंने सरकंडे का बन हुआ बहुत लंबे लंबे बहुत नोकीले उनके पत्नियां भी एकदम तलवार की धार से लेने के लिए हो और वो सांब का वो जो बचा हुआ जो टुकड़ा था उसे एक मछली ने खाया, मछली को मछुआरे ने पकड़ा और वो जब उसे चीर कर देखा पेट में ये निकला, उसने अपने बाण की के नोक पर लगा लिया और वही जब बंसी लोग उसे अपशन देकर अपशकुन देकर वहां पर आए थे, क्या नाम है सोमनाथ जी का मंदिर जहां पर, वहीं पर आए अनिष्टों की शंका को दूर करने के लिए। वहां पर उन्होंने स्नान किया, पंडारक की स्नान किया और बहुत दान दक्षिणा सब कुछ दिया। देने के बाद में मेरे नाम एक मधु मैंने मदिरा उन्होंने पान और धीरे 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 होश नहीं रहा और फिर एरके लेकर सरकंडे लेकर पर युद्ध करते थे सारे मारे गए। बलदेव जी रहे, बलदेव जी ये दृश्य देखकर समुद्र के किनारे ध्यान लगाया, उनके सिर शरीर से एक सर्प सफेद निकला और वो निकल करके चला गया। उसका दुशान वो नित्य गोलोक धाम में प्रवेश कर गए। कृष्ण वहीं पर पासी में बैठे थे, बहेलिए ने मान चलाया और इसके बाद में कृष्ण सशरीर ही गोलोक में पहुंचे, किंतु यहाँ पर पहलिए के बाण से मरे नहीं। ये जोग माया के प्रभाव से, महामाया के प्रभाव से साधारण लोगों ने देखा, ब्रह्मा और दूसरे दूसरे देव शंकर इत्यादि देवताओं ने उन्हें देखा, सिद्ध महर्षियों ने देखा कि कृष्ण सशरीर ही गोलोक में पहुंचे। इस तरह से है दुर्वासा ऋषि जी का कृष्ण लीला में बहुत ही योगदान हम देखते हैं।
बंद कर लें इधर ही चलते
मथुरपुर भाषा अपने हजारों शिष्यों को लेकर हस्तिनापुर में दुर्योधन ने उनका सत्कार किया। महर्षि कुछ दिनों तक दुर्योधन के राजभवन में ही ठहरे। पहले बतलाए जी आज शाखा के बड़े अटपटे ऋषि थे, उनका आश्रम हजारों शिष्यों से दक्ष में भरा रहता। अब क्या वो चाहेंगे चाहते हैं किसी को पता नहीं रहता था। दुर्योधन के यहाँ रहते थे, कभी असमय में उनको भूख लग जाती और तुरंत खाने का प्रबंध करने के लिए कहते, कभी भोजन उपस्थित हो जाने पर सहसा वहां से चले जाते, कभी बड़ी जोर से भूख लगती और थोड़ी देर के बाद में भोजन के उपस्थित हो जाने के बाद कहते मेरी रुचि नहीं है, मुझे भूख नहीं है। कभी रात बिरात में ही उठ जाते और आवश्यक जो वस्तुएं सहज रूप से नहीं मिल सकती उसी के लिए आदेश देते। दुर्योधन बड़ी सावधानी के साथ उनकी सेवा करता रहा। उसने कर्ण शकुनी विशासन इत्यादि का भी बहुत सहयोग रहता था। वो किसी प्रकार से ऋषि को
संतुष्ट करना चाहते थे। कुछ दिनों के बाद ही, दो चार दिन के बाद ही ऋषि बड़े संतुष्ट हुए और दुर्योधन से कुछ वर मांगने के लिए कहा। दुर्योधन अब एक सब आधा हो
बोलो
कि देखो दुर्योधन ने पहले से ही कर्णादि कर्ण दुशासन शक्ति इत्यादि से मंत्रणा कर लाकर परामर्श कर यथि कर रखा था। जो देखा क्या बार मांगना है ऋषि के कहने पर उन्होंने उसने यह बर मांगा कि प्रभु 20 रुपये आप हमारे अतिथि हैं, आप हमारे बड़े भाई जोशी महाराज के यहाँ भी उसी प्रकार से आतिथ्य ग्रहण करें। वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के सरल उदार और सब गुणों से संपन्न है और हमसे बड़े हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उनके यहाँ शिक्षक दें। चलो एक ये मेरी प्रार्थना है कि आप उनके यहाँ उस समय पहुँचे जबकि दृष्टि इत्यादि सारे भाई लोग उनका सारा परिवार खा चुका हो, यहाँ तक कि द्रौपदी भी खाकर अपने रसोई के बर्तनों को मार चुकी हो। इस अवस्था में आप वहाँ पर पहुंचकर उनसे भोजन के लिए पहुंचे। ऋषि प्रसन्न तो हुए किंतु उन्हें साथ साथ में अम्बरीश महाराज का अम्बरीश महाराज जी का स्मरण आया। भक्तों से लज्जा ठीक नहीं किंतु वो युधिष्ठिर को वर दे चुके थे, इसलिए अपने सारे शिष्य सहित कम्यक वन में महाराज युधिष्ठिर के पास में पहुंचे। उस समय वो अपने वनवास 12 वर्ष का वनवास पूरा कर रहे थे। ठीक वे उस समय पहुंचे जिसमें द्रौपदी उनका सारा परिवार भोजन कर चुका था। द्रौपदी भी परिवार भी सबको खिला पिला कर स्वयं भोजन कर और अपनी बटलोई को माज रखा था। युधिष्ठिर महाराज जी अभी अपनी आराधना से सूर्यदेव को प्रसन्न किया था और सूर्यदेव ने उन्हें एक बटलोई उनको दिया था और कहा था कि जब इस बटलोई को अपने पास रखो, इसमें जो रसोई बनेगी उससे सारा संसार भी तृप्त हो सकता है। कितने भी व्यक्ति खाए तो उसमें खाद्यान्न समाप्त नहीं होगा। सब लोगों के खाने के बाद में द्रौपदी जब इस बटलोई को माज करके अपने संग खा करके इसको माजेगी, इसको माज करके रख देगी, उसके बाद में यह अन्न प्रदान नहीं करेगा, उसमें में खाद्यान्न नहीं पाया जाएगा। आज द्रौपदी ने भी सबको खिला आज द्रौपदी ने सबको खिला करके स्वयं ही अन्न ग्रहण करता और प्रसाद पाती थी थी और उसे माँच कर रख दिया था। इतने में दुर्गाशा जी वहाँ पर पहुंचे, अपने शिष्यों के साथ में पहुंचे और बड़ी भूख लगी है ऐसा कहकर महाराज युधिष्ठिर से भोजन प्रस्तुत करने के लिए कहा और उसे यह कहा कि मैं पास ही में स्थित सरोवर में स्नान करने के लिए या गंगा में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ से जल्दी से अपनी नित्य क्रिया स्नान नित्य क्रिया से को समाप्त करके जल्दी ही यहाँ पर रखना, मैं आ रहा हूँ तो भोजन प्रस्तुत रखना। महाराज विवेक से बड़े चिंता में बड़े चिंतित हुए। द्रौपदी से उन्होंने कहा मस्ती के लिए अभी भोजन प्रस्तुत करना है, क्या किया जाए। द्रौपदी ने कहा कि सब संकटों में आपके सखा श्री कृष्ण हमारी हम लोगों की सहायता करते हैं, इस संकट में उनके अतिरिक्त कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता। ऐसा कर द्रौपदी वहाँ पर भगवत चिंतन करते, कृष्ण की चिंतन कृष्ण का चिंतन करती हुई और उनका ध्यान करने लगी। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी का आह्वान सुनकर विचलित हो गए और द्वारका से जब यहाँ पर उपस्थित हो गए, बोले सखी मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे पहले खिलाओ। द्रौपदी ने कहा जो प्रभु समझ कर सकते, एक मिनट लगे। द्रौपदी बोली हे करुणा वर्णाम अवतार करुणा वर्णाम अला करुणा वर्णा वर्णा ले प्रभु कृष्ण, हम लोग आज बड़े संकट में फंसे हैं और इधर आपको भी भूख लगी। अभी महर्षि दुर्वासा यहाँ पर उपस्थित में है और भोजन के प्रस्तुत करने के लिए आ गए हैं। महाराज अपने भाइयों के साथ में सभी भोजन कर चुके हैं, मैं भी भोजन कर अभी उठी हूँ। इतने में दुर्गाशा जी भोजन के लिए आदेश देकर के गए हैं, वो अभी तुरंत स्नान और नित्य क्रिया करके अभी पहुँचने वाले हैं। यदि उनको हम लोग भोजन नहीं दे सकते तो अभी हम लोगों का सर्वनाश अभी संपाद देकर के सर्वनाश कर देंगे। कृष्ण बोलिए तुमको अपनी सुझी है, मुझे बड़ी भूख लगी है, पहले कुछ खिलाओ, इसके बाद में हमको चिंता करेंगे। कहीं जैसे आप बटलो ही थी तो शाम माच करके मैंने रख दिया, हमारे यहाँ तो मेरे पास तो कुछ खिलाने के लिए नहीं है। कृष्ण ने कहा जरा बटलो ही को लाना। वो बटलो ही लाने पर कृष्ण ने देखा, अच्छी तरह से सावधानी से देखा और उसके गले में फंसे हुए एक सांप के पंखे को लगा हुआ देखा। उन्होंने अपने नखों से उंगली के नखों से उसे उंगली से उसे निकाला और अपने मुख में देकर और उसे निगल गए और पानी मांग जल मांगकर उन्होंने एक भर पानी पिया। उन्होंने तृप्त उसमें सारा जगत इसे तृप्त हो जाए। इतना कहते ही सब लोगों के पेट अनायासी भर गए। दुर्वासा स्नान कर रहे थे, उसी समय उनके शिष्यों ने और उन्होंने अनुभव किया कि उनका पेट भर गया है और वे अब कुछ भी नहीं खा सकते। ये आखिर इसमें रहस्य क्या है वो कृष्ण नहीं समझ सके। इधर कृष्ण ने सहदेव जी को उनको बुलाने के लिए विलम्ब देकर के बुलाने के लिए भेजा, किंतु वे वहां पर गए तो देखा जी वहां पर कोई भी नहीं था। ऋषि लोग सारे डर के मारे अम्बरीश महाराज जी के उस लीला को स्मरण कर अपनी घटना को स्मरण कर बड़े डर गए और कहीं भीम गदा लेकर के न पहुंच जाए, इसलिए वहां से घोर भुआ लोक इत्यादि को पार करते हुए वो लोग सत्यलोक को पहुंच गए। महर्षि लोग को वहां पर उपस्थित हो भाग गए। इस प्रकार से इनका संकट टल गया और वो निश्चिंत हो गए। इसी प्रकार से एक समय की बात है, कुंती जी अभी बच्ची थी, ये उस समय कुंती भोज राजा के यहाँ पालित कन्या के रूप में रह रही थी, सब गुणों से अलंकृत थी
बड़ी सुंदरी थी भी। इस समय एक दिन दुर्वासा अपने कुछ शिष्यों के साथ वहां पर उपस्थित हुए और महाराज महाराज कुंती भोज के निकट अतिथि रहे। महाराज ने इस दुर्वासा जी की सेवा के लिए बेटी कुंती को नियुक्त किया। दुर्वासा और सगे तो ऋषि थे ही, वे कभी भूख बड़ी भूख लगी कहते, थोड़ी देर के बाद में कहते भूख नहीं है, कभी रात में रात में उठ जाते, वो चीजें जो उपलब्ध साजी नहीं है ऐसी चीजों को मांगते। कब क्या उनकी इच्छा होगी, क्या 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 मांगेंगे, इसको किसी कोई नहीं समझता था। किंतु बड़ी सहनशीलता के साथ में कुंती जी ने उनकी सेवा की। कुछ दिनों के बाद ही वो बड़े प्रसन्न हुए और कुंती को वर मांगने के लिए कहा। किंतु देवी कुंती कुमारी कुंती जी ने उनसे कहा, आखिर तो ये कृष्ण की बुआ और पांडवों की मैया है। उन्होंने कहा, हमें किसी भी लौकिक और परलौकिक वर की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस भगवान हमारे ऊपर में प्रसन्न रहे, बस ऐसा ही हमें चाहते हैं। यह सुनकर से ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और नहीं मांगने पर भी उनको कहा, मैं तुम्हें अथर्ववेद का यह मंत्र प्रदान करता हूँ जिसे तुम देवताओं को तो आवाहन कर सकती है और जो कुछ तुम्हारी इच्छा होगी सब कुछ उन लोग पूर्ण कर रहे। कुंती ने और इसके बाद में चले गए। कुंती ने उसकी परीक्षा के लिए सूर्यदेव का आवाहन किया और सूर्यदेव वहां पर उपस्थित हुए और बोले, तुम्हें मैं एक पुत्र रत्न प्रदान करता हूँ। क्या कर सकते हुए चले गए। कुंती जी ने देखा उनके कान से एक पुत्र पैदा हुआ, यही उसी पुत्र को उन्होंने अपनी लोक लज्जा बचाने के लिए किसी नदी में धोल में उसको रखकर और उसे नदी में बहा दिया। यही यह पुत्र और कोई नहीं बल्कि यही पुत्र महाधनुर्धर महारथी ये कर्ण था जो कि अर्जुन के हाथों से पीछे ये मारा गया। उनका माता पिता का जन्म इत्यादि और तपस्या और बड़े क्रोधी स्वभाव के उग्र स्वभाव के इसके बाद ही मूल में चीज को दे चला। इनके लाखों शिष्य थे, लाखों की संख्या लाखों थी। दुर्वासा ने उर्व कन्या उर्व ऋषि के पूर्व के पुत्र की कन्या कंदली से इन्होंने विवाह किया था। ये कंदली बड़ी उग्र स्वभाव की थी, इसलिए इसके पिता ने अर्थात उनके ससुर ने विवाह के समय में अनुरोध किया था कि इसके कम से कम आप 106 अपराधों को आप क्षमा करेंगे। उस समय उन्होंने वचन दिया था कि 100 अपराध तक कुछ नहीं कहूंगा। किंतु कुटिल और उग्र स्वभाव वाली कंदली थोड़े ही दिन में 100 अपराध इनके चरणों में 100 अपराध उसने किए और उसके पश्चात उसकी सीमा अतिक्रम करने पर उन्होंने शाप प्रदान कर उसे भस्मीभूत कर दिया। द्वारका में भी रहते समय एक बार इन्होंने यादववंशिया एक का नानसा नाम की एक कन्या से भी इन्होंने विवाह किया था, किंतु कुछ दिनों के बाद में इसे भी छोड़ करके तपस्या करने के लिए चले गए। ये दुर्वासा जी के अच्छा उसके बाद कैसे हमारे मंदिर के सामने हमको मिला, उनका जो लिखवाया है ना कागज पर उस ले लें, उसके बाद में इसको ऐड कर देना, इसके बाद में फिर ये लिखो। इसके पास ही में यमुना के समीप, यमुना के ऊपर में एक मल्लाहों का गांव है आजकल वर्तमान काल में, जो कि विष्णुपुर के नाम से अप्रसिद्ध है। पहले कुछ दिनों पहले इसका नाम विष्णुगंज था। विष्णुगंज का तात्पर्य ये विष्णु, भगवान विष्णु से इसका नाम प्रफंस होकर के इसका नाम विष्णुगंज हुआ। दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु के अंश हैं और दुर्वासा जी के भाई हैं। ये कभी कभी उनके आश्रम के पास ही आकर के रहते थे, दोनों में बड़ी प्रीति थी, इसलिए इस ग्राम का नाम विष्णुपुर।